भी शिक्षा दे रहे हैं, खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए। शिक्षा तो सबके लिए है, ये गृहस्थ आश्रम है और जो धन कमाते हैं। तो भगवान विष्णुदेव जी कह रहे हैं किस प्रकार की भावना से आपको रहना चाहिए। ठीक है,
एवा मई शेखता सहर्धर्था जनेषु देहंबरवर्तिकेषु गृहेषु जयद्मा जगति मत्सु लोके।
जो लोग श्री कृष्ण भावना को
भावनामृत, कृष्ण भावनामृत लिखा है वहां।
अच्छा, जो लोग श्री कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करने तथा ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, वे केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य करते हैं। वे उन लोगों से बेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, संयम, मैथुन तथा सुरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र व धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। रात में महाराज जी बताते हैं कि चाहे निर्विशेष हो या भक्त, यदि वह आत्म तत्व में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेलजोल न रखें जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। न ही उसे पत्नी, संतान, मित्र आदि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए लवाई रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ है और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक और न इससे कम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग पालन के लिए धन कमाने का यत्न करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अजनम मदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो गृहस्थ को चाहिए श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। उसे चाहिए कि धर्म में श्री विग्रह की, उसको चाहिए कि घर में शिव विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करें और उसे प्रसाद दें। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए।
समझे? अच्छा है ना श्लोक पर तात्पर्य।
एवा महिषे कृता सहोदर्था जनेषु देहं भरवर्तिकेषु गृहेषु जयत्मा जरति मत्सु ना प्रीति युक्त यवत अर्थ श्लोके।
ये भगवत का महत्वपूर्ण श्लोक हम पांचवें स्कंद में प्राप्त करते हैं और ये शिक्षा भगवान ऋषभदेव जी दे रहे हैं। ऋषभदेव जी परम भगवान के अवतार हैं। इनके पिता का नाम था महाराज नाभी और माता का नाम था मेरु देवी। इनके पिता बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध भक्त थे और एक बहुत बड़ा यज्ञ का पालन कर रहे थे। यज्ञ का महत्व यह था कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो भगवान के समान। पर उन्होंने ये यज्ञ बड़ी श्रद्धा से की थी और भगवान उनके यज्ञ से बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो, पर मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, तो मैं ही तुम्हारी संतान बनकर आ जाऊंगा। तो वो फिर आए भगवान ऋषभदेव जी के रूप में। ये नहीं कि आजकल अनेक व्यक्ति दावा करते हैं हाँ ये ऋषभदेव जी के अवतार हैं वगैरह। जब भगवान ऋषभदेव जी आए पृथ्वी पर तो उन्होंने सारे दिव्य लक्षण प्रकट किए, उनके पैरों के नीचे शंख इत्यादि सब चक्र सब दिखे। तो उनके पिताजी समझ गए कि ये है भगवान के अवतार हैं। और ऋषभ, ऋषभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। तो ऋषभदेव, ऋषभदेव जी बड़े प्रेम के साथ प्रजा से व्यवहार रखते थे। आजकल तो समाज की स्थिति ऐसे है कि आप तो अपने नेताओं के साथ कुछ संबंध नहीं जोड़ सकते, केवल टेलीविजन के द्वारा जोड़ सकते हो। हाँ, वो आपसे जब उन्होंने बात करना है तो टेलीविजन में बात करेंगे और आप टेलीविजन के सामने बैठकर देखोगे। पर प्राचीन समय में जो नेता थे उनका बड़ा गहरा संबंध रहता था पूरी प्रजा के साथ। पूरी प्रजा के पास सुविधा होती थी कि किसी समय भी अपनी समस्या लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाए। तो महाराज नाभि ने देखा कि पूरे राज्य की प्रजा बहुत स्नेह रख रही है ऋषभदेव के तरफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें राज्य पर बिठाकर खुद वो चले गए बद्रिकाश्रम के तरफ। तो एक समय इंद्रदेव, देवता इंद्र के हृदय में ईर्ष्या हुई ऋषभदेव के प्रति। उन्होंने कहा कि ऋषभदेव को इतना आदर मिल रहा है, मैं इनके राज्य के वासियों को सबक सिखाता हूं। उन्होंने बारिश रोक दी। अभी बारिश के बगैर तो कोई जी नहीं सकता। हाँ, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। जैसे कि जब महाराज नंद वो किसान थे तो निर्भर थे इंद्र की कृपा के ऊपर, तो हर साल वो यज्ञ करते थे। तो भगवान इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बंद करो यज्ञ, कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई हम तो किसान हैं, यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र की कृपा नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं आएगी, फसल नहीं होगी। हाँ, तो भगवान ने रुकवा दिया। तो इंद्र ने कहा मैं पानी नहीं भेजूंगा। पर ऋषभदेव जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से पानी पैदा कर दिया। भगवान है, भगवान के लिए क्या असंभव है? नहीं, आजकल के ढोंगी भगवान तो कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकते। पर जब इंद्र ने बारिश नहीं भेजी तो भगवान ऋषभदेव जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से बारिश पैदा कर दी। तो इंद्र ने समझ लिया हाँ कि ये बस परम भगवान है, तो उनमें इतनी शक्ति थी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र के भगवान के लिए क्या, करोड़ों पुत्र हो सकते हैं, जिनमें कि सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत, और ये पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बुलाया जाता था। तो ऋषभदेव जी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं इस अध्याय में। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि किस प्रकार व्यक्ति को मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नाहम देह दया बाजम लोके, कि ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका दुरुपयोग मत करो पशुओं के समान इंद्र तृप्ति के कार्य के लिए, पर इसका उपयोग करो किस लिए, तपस्या के पालन के लिए। और तपस्या किसकी खुशी के लिए, तपो दिव्यम पुत्र का, परम भगवान की खुशी के लिए। और ये उपदेश जो ऋषभदेव भगवान ने दिया है ये तो पूरे मानव समाज के लिए है, ये नहीं कि ये उपदेश केवल ब्रह्मचारियों को दिया जा रहा है या गृहस्थ को दिया जा रहा है, ये उपदेश तो पूरे मानव समाज को दिया जा रहा है। क्या कि तुम तपस्या का पालन करो, किस लिए? भगवान की प्रशंसा के लिए। और अगर तुम तपस्या का पालन करोगे भगवान की प्रशंसा के लिए तो उसका क्या लाभ होगा? उसके बदले में आपको असली खुशी प्राप्त होगी। और ये असली खुशी का क्या है? ये असली खुशी जो है ये अनंत है, केवल ये बढ़ते ही जाएगी। तो इस शिक्षा के पश्चात ऋषभदेव जी इस आज के श्लोक में गृहस्थ भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जो लोग श्री कृष्णा भावनामृत को पुनर्जीवित करने तथा ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य ही करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये उपदेश गृहस्थ भक्तों को दिया जा रहा है और गृहमेदियों को नहीं। आप इतनी लेट से क्यों आ रहे हो? इतनी सबसे पहले तो यहां भगवान उपदेश दे रहे हैं गृहस्थ भक्तों के लिए, हाँ, गृहमेदियों के लिए नहीं। गृहमेदी और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृहमेदी उसे कहा जाता है जो स्त्री पत्नी के साथ रहता है केवल इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर। गृहस्था उन्हें कहा जाता है, जैसे कि आपको आपने सुना होगा इस श्लोक में शब्द गृहेशु जय माजर रति मत्सु गृहेशु, तो गृहस्था उन्हें कहा जाता है जो कि ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, जो कि कृष्णा भावनामृत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। क्योंकि कृष्णा भावनामृत होना तो हमारा असली स्वाभाविक स्वरूप है, पर उसे हम भूल बैठे हैं। जैसे कि आईने में धूल बैठ जाती है तो फिर आप अपने चेहरे को देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार कृष्णा भावनामृत को हमने पुनर्जीवित करना है। ये जो आपको शिक्षा दी जाती है, जप करना, वैदिक भक्ति का पालन करना, इन सब के पीछे एक भाव रहता है। और भाव क्या है? वो भाव यह है कि हमें कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। केवल ये सोचना कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उससे तो कृष्ण भावनामृत फिर से पुनर्जीवित नहीं होगा, प्रयास करेंगे तो होगा। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जो ईश्वर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक संसार में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, सच है ना? हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमें चाहे, हम किसी और के प्रति प्रेम स्नेह वगैरह करें। पर कृष्णा भावनामृत जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये चाहता है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में हो, उसका असली लक्ष्य है कि ईश्वर प्रेम बढ़ाया जाए। और इसलिए वो वही कार्य करता है जिसका श्री कृष्ण के संबंध से संबंध हो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि हमें उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उनसे हमें बचना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, प्राणे बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य ही करते हैं। तो ये होना चाहिए हमारा भाव और उद्देश्य भी। अभी आप कहोगे कि जैसे कि हम गृहस्थ हैं तो हमें नौकरी करना है, धंधा करना है वगैरह, धन कमाना है, तो जैसे कि यहां कहा गया है कमाइए, पर उतना ही प्रयास कीजिए जितना कि अवश्य हो। कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम में इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति की विधियों का पालन नहीं कर पाए। और भौतिकवादियों के साथ आप कहोगे कि बार बार हम भौतिकवादियों की निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करते। शास्त्र केवल हमें रोशनीय ज्ञान दे रहा है जिसके उपयोग से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकें। इसलिए कहा गया है कि उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जिनका क्या उद्देश्य है, भौतिक कार्य, उनके मेल जोल नहीं बढ़ाओ। मतलब कि उतना ही मेल जोल रखो जितना कि अवश्य हो। जैसे आप धंधा करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो अवश्य ही आप उस वातावरण में रहते हो जहां की हर प्रकार के व्यक्ति से मेल जोल करना पड़ता है। तो इस श्लोक के अनुसार उनसे उतना ही मेल जोल रखो जितना कि अवश्य हो, आवश्यकता से अधिक नहीं। क्योंकि जैसे कहा गया है चैतन्य चैतन्यमृत में, सत्संग त्यागा ए वैष्णव आचार्य, श्री संग एक साधु कृष्ण भक्त आला। संगत का प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे गुणों को अनुकूल कर पाओगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे विचार हृदय में बढ़ेंगे। तो इसलिए शास्त्र यहां उपदेश दे रहा है उन व्यक्तियों के लिए जो कि ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं। तो ईश्वर प्रेम बढ़ाने के जो इच्छुक हैं उन्हें सबसे पहले क्या, उन्हीं कार्यों को स्वीकार करना है जिनका श्री कृष्ण से संबंधित हो। उन्हीं कार्यों से, अगर किसी कार्य का कृष्णा भक्ति से संबंध नहीं है तो हम क्यों करें। जैसे एक व्यापारी, आप लोग सब व्यापारी हो तो आप वही सौदा लेते हो जिसमें नफे की उम्मीद हो, है ना। अगर आपको शुरू से पता हो कि इस सौदे में घाटा आएगा तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। बाद में आ जाए वो अलग बात है, पर अगर शुरू में आपको पता हो कि इसमें घाटा आएगा तो आप कभी नहीं लोगे सौदा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार व्यासदेव जी के परिश्रम के कारण हमें पता है किस कार्य में नफा है, किस कार्य में घाटा है शुरू से। ये नहीं कि हमें बाद में पता लगेगा किसमें घाटा है किसमें नफा है, हमें शुरू से ही पता है किस कार्य में हमें कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम बढ़ाने में नफा होगा और ईश्वर प्रेम बढ़ाने में किस कार्य से घाटा होगा। जैसे कि रूपा गोस्वामी जी भी उपदेश अमृत में इस विषय में कहते हैं, हाँ, के अत्याहरा प्राय शस्त्र पर जल्प न्यामाग्रह जन संघर्ष लोलियम चा सदीर भक्ति रूपी, कहते हैं किस प्रकार भक्ति नष्ट हो जाती है और किस प्रकार भक्ति बढ़ती है। उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत्कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतोवृद्धि सदीर भक्ति प्रसिद्धति। तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम बढ़ाने के जो कार्य है, जो कृष्ण से संबंधित कार्य है, उन्हीं का हमें पालन करना चाहिए। और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं
उनसे मेल जोल उतना ही रखो जितना कि अवश्य हो, अधिक नहीं। आगे कहते हैं, वो गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें, जैसे ऋषभदेव जी कह रहे हैं, कर्तव्य तो करना है। ऋषभदेव जी इसी श्लोक में कह रहे हैं क्या कि जो आपका कर्तव्य है वो तो हमने करना है, पर भौतिक संसार में जो संबंध वगैरह हैं उनके प्रति आसक्त भाव से रहना चाहिए। दूसरे शब्द में, जैसे गीता में भगवान उदाहरण देते हैं क्या, कमल का फूल जल में है पर जल को छूता है नहीं छूता, तो ये नहीं कह रहे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाओ वगैरह, पर ये कह रहे हैं कि निष्काम भाव या आसक्त रूप से किस प्रकार से रहना। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी और स्पष्ट रूप से ये समझा रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति धन कमाना चाहे तो कमाए, पर कृष्णा भक्ति के लिए। क्या कहा कि या और यहां तात्पर्य में कहा गया है कि व्यक्ति को अगर धन कमाना है तो कमाना चाहिए भक्ति की विधियों के पालन के लिए। और यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण वंदनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति। तो दूसरे शब्दों में यहां हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अगर व्यक्ति गृहस्थ भी हो तो उसे ये नवदा भक्ति का पालन करना चाहिए। आप बेशक व्यापारी हो, नौकरी कर रहे हो, पर नवदा भक्ति का हमें पालन जरूर करना चाहिए। और ये नवदा भक्ति आरंभ होती है किसके साथ, श्रवणम और कीर्तनम, भगवान के नामों का जाप करना, भगवान के जाप को सुनना, भगवान की कथा पढ़नी और भगवान की कथा सुननी। ये सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन के लिए। इतना प्रयास नहीं करना चाहिए, और प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में कहते हैं कि किसी गृहस्थ को श्रवणम कीर्तनम का समय नहीं मिले। कहा गया ने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, गृहस्थ को चाहिए कि श्रवणम तथा कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। कई बार हम मिलते हैं ऐसे लोगों से, कहते हैं स्वामी जी इतना प्रयास करना पड़ता है कि श्रवणम कीर्तनम के लिए समय ही नहीं मिलता। तो यहां बड़े स्पष्ट रूप से कहा है उसे चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। तो श्रवणम कीर्तनम के लिए जो समय चाहिए वो हमें जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम ही एक साधन है जिसके द्वारा ईश्वर प्रेम बढ़ सकेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि श्रवणम कीर्तनम के बिना ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ये असंभव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, हे भगवान आप इतने दया दयालु हो कि आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है। कहा किसमें, आपके दिव्य नामों में, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो नित्य अभिन्नात्म नाम नामिनः। भगवान के नामों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम, चाहे हम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास, हम सबका आध्यात्मिक जीवन निर्भर है श्रवणम कीर्तनम के ऊपर। हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। अगर श्रवणम कीर्तनम के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी तो ईश्वर प्रेम नहीं बढ़ेगा, और ईश्वर प्रेम नहीं बढ़ेगा तो क्या परिणाम होगा, भौतिक प्रेम बढ़ेगा। यहां तक ईश्वर प्रेम बढ़ाओ नहीं तो भौतिक आकर्षण रहेगा. अगर आप भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हो तो श्रेयस प्रकार के कार्यों को स्वीकार करना पड़ेगा. श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि संतों ने सूत गोस्वामी से निवेदन किया. नामश्रण्य के भन में सारे संत उपस्थित, हजारों संत उपस्थित थे और उन्होंने सूत गोस्वामी को चुना था मार्गदर्शन देने के लिए. तो उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा कि आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो श्रेयस प्रकार का हो. तो संस्कृत में दो शब्द हैं, एक का है अर्थ, एक है श्रेयस, दूसरा है प्रयास. प्रयास का अर्थ है वो कार्य जिसके द्वारा तुरंत सुख इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो. श्रेयस का अर्थ है वो कार्य को निभाना जिसके पालन के द्वारा लंबे सफर में आपको लाभ हो. तो संतों ने जब सूत गोस्वामी से निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में कि आप हमें श्रेयस का ज्ञान दीजिए. उन्होंने स्पष्ट कहा श्रेयस, हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यो है श्रेयस. जिस प्रकार गीता के 18वें अध्याय में भगवान तीन प्रकार की खुशी का वर्णन करते हैं, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, हाँ, सात्विक खुशी, राजसिक और तामसिक. सात्विक खुशी के विषय में क्या कहते हैं, जो कि आरंभ में कड़वी लगती है बाद में मीठी, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान बढ़ता है. और राजसिक खुशी क्या, शुरू में मीठी बाद में कड़वी, और जो कि इंद्र तृप्ति के कार्य के द्वारा प्राप्त होती है. साधारण जीवन में भी हम सबका अनुभव है कि माता पिता रिश्तेदार सब श्रेयस का ही सोचते हैं, पर भौतिक दृष्टि से. जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं वो तो चाहते हैं खेलें दिन रात, पर माता पिता कहते नहीं 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 खेलो नहीं, पढ़ाई करो, है ना, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. तो कहते नहीं 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 पढ़ाई करो. तो भौतिक दृष्टि से भी हम श्रेयस का ही सोचते हैं. आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, पैसा जोड़ते हो, फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, यही पर हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ लंबे सफर में क्या लाभ मिलेगा. पर श्रेयस का अर्थ है कि ये देखना कि लंबे सफर में आध्यात्मिक दृष्टि से कैसा लाभ है. तो संतों ने सूत गोस्वामी को कहा कि हमें एक श्रेयस का ज्ञान दो. वो ज्ञान के इच्छुक थे पर उन्हें ज्ञान चाहिए था श्रेयस का, जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें. तो श्रवणम कीर्तनम ये है हमारा सबसे प्रथम कार्य कि हम हरि नाम के प्रति आकर्षित हों. और जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है आप हरि नाम का जाप तीन स्थितियों में कर सकते हो. पहली स्थिति यह है कि आप हरि नाम का जाप कर रहे हो साथ में अपराध कर रहे हो. दूसरी स्थिति यह है कि आप जाप कर रहे हो और अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हो. और तीसरी स्थिति वो है कि जब अपराध आप जाप करते हो बिना किसी
अपराध के, और 10 धाम अपराध का तो हम वर्णन करते ही हैं, पर कई बार हम इसका वर्णन करते हैं तोते के समान। इनके पीछे जो भाव है, गहरा संदेश है, वो हम भूल जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि एक अपराध यह भी है कि हम लापरवाही के साथ जाप करें या सावधानी के साथ जाप नहीं करें। दूसरे शब्दों में, सावधानी के साथ जाप करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादन सेवनम, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ को भी जीवन इस प्रकार से बिताना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो। तो सब भक्तों को, कई बार मंदिर के ब्रह्मचारी भी इस प्रकार से प्रयास परिश्रम करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम के लिए पूरा समय नहीं ढूंढ पाते। तो श्रवणम कीर्तनम के लिए हमें पूरा समय फिर आगे विष्णु स्मरणम के लिए भी काय समय निकाल पाएंगे, और अगर हम श्रवणम कीर्तनम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो विष्णु स्मरणम के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। तो ईश्वर प्रेम बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि कई लोग सोचते हैं, संतों के पास जाएंगे, कहेंगे स्वामी जी आशीर्वाद दो और ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं ऐसी गुरु की खोज में होते हैं क्योंकि कुछ चमत्कार से ईश्वर प्रेम उनके हृदय में जागृत कर देगा, पर यह संभव नहीं है। अगर हमें ईश्वर प्रेम बढ़ाना है, अगर हम ईश्वर प्रेम चाहते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे भगवान कहते हैं ये यथमम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति प्रयास करेगा मुझे समझने के लिए उतनी मात्रा में वो मुझे समझ सकेगा। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि उसे चाहिए कि घर पर आचिर विग्रह की पूजा करे। तो गृहस्थों को कहा गया पहले तो श्रवणम कीर्तनम करो, हाँ, और पूरा समय निकालो श्रवणम कीर्तनम के लिए। फिर आगे कहा गया है भगवान के आचर विग्रह की उपासना करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम साधु संग आचर विग्रह की पूजा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, तो मित्रों को आमंत्रण करे और उन्हें प्रसाद दे। मित्रों को आमंत्रण करो, ये भी गृहस्थ का कर्तव्य है। अभी मित्रों को आमंत्रण करना हम वैष्णव भक्तों के लिए क्या साधन है, नामहत प्रचार के द्वारा। मैं जो आपको कह रहा हूं वही कह रहा हूं जो कि ऋषभदेव जी ने कहा और प्रभुपाद जी ने आगे तात्पर्य में समझाया। तो प्रभुपाद जी यहां गृहस्थों की जिम्मेदारी समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं गृहस्थ को चाहिए पहले कि शरणम तथा कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। आगे उसे चाहिए कि घर पर आचर्य विग्रह की पूजा करे। तो अगर आप घर पर आचर्य विग्रह की पूजा नहीं कर रहे तो मंदिर में करो, घर में मंदिर बना के रखो, तस्वीर रखो राधा गिरधारी की, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की, और उनकी बकायदा पूजा करो। आगे कहते हैं क्या, मित्रों को आमंत्रण करें उन्हें प्रसाद दो। तो मित्रों को आमंत्रण करो किस लिए, प्रचार के लिए, सामाजिक चर्चा के लिए नहीं, आध्यात्मिक चर्चा के लिए। तो सब गृहस्थों को ये भी प्रयास करना चाहिए, मित्रों को आमंत्रण करना का नामहत कार्य में जुड़ना।
सबको ये देखना चाहिए कि हम प्रचार के कार्य में कैसे आगे सहयोग दे सकते हैं। ये मित्रों को आमंत्रण करना का ये अर्थ नहीं कोई भौतिक, जैसे लोग पार्टी वगैरह करते हैं और आजकल नवरात्रि लोग कैसे मनाते हैं, वो गर्भ क्या क्या डांस करके क्या बुलाते हैं, वो नवरात्रि रोज रात को ये, मैं तो उसको डिस्को डांस बुलाता हूँ। तो ये नहीं कि हम मित्रों को आमंत्रण करें कोई सामाजिक कार्य के लिए, उनको आमंत्रण करो भगवान का उपदेश देने के लिए। हर व्यक्ति को अपना घर एक प्रकार का प्रचार केंद्र बना लेना चाहिए और हम सबको इनामहत प्रचार में जुड़ना चाहिए। वहां आप अपने मित्रों को आमंत्रण करो, मित्रों को उपदेश दो, मित्रों को आमंत्रण करो मंदिर के लिए और फिर प्रसाद दो, जैसे कि रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं, छह प्रकार के संबंध हमें जोड़ना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संस्था का उद्देश्य ही यह है कि ये छह प्रकार के संबंधों को बढ़ाना। छह प्रकार के संबंधों में एक है प्रसाद खिलाना, दूसरा है प्रसाद स्वीकार करना। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं गृहस्थों का कार्य है कि प्रसाद दें आगे, जैसे कि शास्त्र में तो कहा गया है कि गृहस्थ को खाने से पहले दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है पड़ोस में। अगर जब कोई भूखा व्यक्ति नहीं आएगा फिर आपको भोजन खाना चाहिए। महाराज रंथी देव ने एक समय व्रत रखा था और अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे, कुछ प्रसाद के साथ जो कि बना था दूध चीनी से, कि एक भूखा व्यक्ति उनके महल में आ गया, कहने लगा राजा मैं भूखा हूं मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो राजा ने जो थोड़ा सा प्रसाद था उसका ही थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। फिर वो खाने लगे थे, व्रत तोड़ने वाले थे, एक और भूखा व्यक्ति आ गया, राजा भूखा हूं मुझे खाने के लिए दीजिए। अंत में उनके पास केवल थोड़ा सा जल बच गया था। फिर एक प्यासा व्यक्ति आया, कहने लगा मैं प्यासा हूं जल दो पीने के लिए, और महाराज ने जल भी दे दिया। ये थी उनकी भावना। तो खैर आप बेशक ये नहीं कर सको कि रोज आकर बाहर बुलाकर देखो कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि शायद आजकल की स्थिति में आपको खाने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर शायद। हाँ, पर ये जरूर करो प्रसाद खाओ और प्रसाद खिलाओ। तो हम भक्तों को एक साथ प्रसाद खाना चाहिए और प्रसाद आगे बढ़ाना चाहिए, फूड फॉर लाइफ। हमें लोगों को प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा। छह प्रकार के संबंध भक्तों में जुड़ने चाहिए। हाँ, एक है ज्ञान देना, दूसरा है ज्ञान लेना। तो हम ज्ञान किन से लेते हैं, जिनके पास हमारे से अधिक ज्ञान हो उनसे शिक्षा लेते हैं, और ज्ञान देते हैं किन्हें, जिनके पास हमारे से कम ज्ञान हो। ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों ही कार्य है हमारे। फिर दान देना। अब दान में क्या दोगे, दान में हम क्या देते हैं, ये क्या प्रसाद देना और प्रसाद स्वीकार करना। अपने मन में जो बातें हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि मन में बात मत रखो। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मन की बातों को सुनाओ किसे, जिनका आपसे अधिक आध्यात्मिक ज्ञान हो। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं, कहते मन में कुछ मत रखो, मन में जो शंका है वो सुनाओ उन्हें जिनका आपसे अधिक ज्ञान हो। जैसे अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे, नहीं परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे शुकदेव गोस्वामी से, नमशाने के संतों ने सूतक गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हमें भी प्रश्न पूछने पड़ते हैं। शंका आती है, बेचैनी आती है, निराशा आती है, इसे हम दूर कैसे करें? रूपक गोस्वामी का उपाय लेकर। रूपक गोस्वामी का उपाय यह है कि आप उनकी शरण लो, सुनाओ जिनका आपसे अधिक ज्ञान हो, और फिर उनसे सुनो। ये नहीं कि पूछो और सुनो नहीं। अब डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी सुनाओ, पर दवाई जब दे तो कहे नहीं नहीं दवाई नहीं चाहिए, फिर काम कैसे बनेगा? रूपक गोस्वामी कहते हैं स्पष्ट, सुनाओ और सुनो। कहते हैं ना विदाती प्रगृहणाति। तो यह है आध्यात्मिक जीवन का मार्ग। तो मित्रों को आमंत्रण करो और उन्हें आप प्रसाद खिलाओ। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो अगर धन कमाना है तो कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, पर भगवत भक्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यह है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। तो ये शिक्षा हमें ऋषिदेव जी दे रहे हैं इस पांचवें स्कंद में, बहुत अच्छी एक हर श्लोक। ऐसे तो भागवतम का हर श्लोक इतना मीठा है, हर श्लोक इतना गहरा उपदेश है कि आप किसी श्लोक को भी पढ़ लो, खोल दो तो आपको उपदेश मिलेगा श्रेयास विषय के विषय में। पर खास करके ऋषिदेव के द्वारा जो शिक्षा है, हर श्लोक का बहुत ही गहरा अर्थ है। और प्रभुपाद जी ने भी अनेक समय ऋषिदेव जी के श्लोकों पर प्रवचन दिया। तो यहां जो इस श्लोक का उपदेश है, बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए क्या कि ईश्वर प्रेम बढ़े, ये होना चाहिए हम सब का सबसे प्रथम लक्ष्य। कई बार लोग कहते हैं हम मानते हैं कि ईश्वर प्रेम बढ़ाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पर हम धीमे धीमे चलेंगे तेजी के साथ में। हाँ अभी तो लंबा काफी समय बचा है, धीमे धीमे ईश्वर प्रेम बढ़ाएंगे। धीमे धीमे भी बढ़ा सकते हो, पर हमें भूलना नहीं चाहिए क्या कि मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है और किसी समय भी समाप्त हो सकता है। गोविंद दास जी क्या कहते हैं, जीवन तलामला। जिस प्रकार एक पत्ते पर पानी का बूंद हो, किसी समय भी वो बूंद नीचे गिर सकता है। तो इसी प्रकार ये जीवन जो है किसी समय भी समाप्त हो सकता है, इसलिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए जल्द से जल्द और इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। तो इसका आप कृपा करके लाभ उठाइए। भगवान ऋषिदेव जी आगे कहते हैं नूनम प्रमता कुरुतेव कर्म। कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ा है वो तो मूर्ख है। प्रमता, प्रमता का अर्थ है मूर्ख। मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि आज मैं इतने कष्टों में फंसा हुआ हूं और क्या कारण है। यही कारण कि मैं भगवान को भूलने का प्रयास कर रहा था। तो कहते हैं नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा। विकर्मा का अर्थ है वो कार्य जो कि शास्त्र के विपरीत हो। तो हमें शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के विपरीत कार्य केवल कष्टों का ही कारण बनेगा। तो ऋषभदेव जी का निर्णय यह है कि वो व्यक्ति प्रमथा है, पागल है, जो कि इस जीवन का उपयोग कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए। तो यह है उनका उपदेश। तो हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, एक घंटा प्रश्न पूछिए पूछिए पूछिए, ये तो बढ़ेगा आप लोगों के लिए। हाँ पूछिए। हाँ प्रेस का, हाँ जैसे अमेरिका में अगर आपके पास दो मोटर हो तो कहते हैं गरीब है, एक मोटर हो तो गरीब हो, दो मोटर चल रहा है। नहीं, इसका अर्थ यह है आवश्यकता से अधिक नहीं, मतलब कि जैसे कि शास्त्र में कहा गया है और प्रभुपाद जी ने भी कहा है, सादा जीवन ऊंचा विचार, वो होना चाहिए हमारा भाव। सो सादा जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए, और अगर शंका है कि क्या है सादा जीवन, तो गुरु साधु का सहयोग लो पूछने के लिए। अगर आपकी ये शंका है कि मर्सिडीज गाड़ी खरीदें या मारुति, तो पूछ लो भक्तों की, भक्तों का सहयोग ले लो पूछने के लिए। ठीक है ना। हाँ जोर से बोलो, सब सुने। हाँ
देखते हैं कि खूब प्रयास भी करते हैं इनके लिए, लेकिन फेल रह जाते हैं। महाराज जी जितनी टाइम पुस्तक पढ़ रहे हैं घर में भी, उतने टाइम माइंड ठीक रहता है, और पुस्तक जैसे रखा तो तुरंत बच्चे में, पत्नी में, या कोई घर के दूसरे चीज में तुरंत मन चला।
प्रयास करते जाओ आस्ते आस्ते, एक दिन में तो नहीं सब प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें लक्ष्य पता होना चाहिए। जैसे कि समझो आप यहां से अमृतसर तक जा रहे हो गाड़ी में, सड़क में, मोटर से, तो ये नहीं कि आप एक मिनट में पहुंच जाओगे। फिर आपको यह पता रहना चाहिए कि अगर आप इसी सीधे रास्ते पर रहोगे तो अंत में पहुंच जाओगे। हाँ, तो इसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा हमें लक्ष्य मिलता है और शिक्षा मिलती है। तो अब हमें प्रयास करना है इसका, इसको निभाने के लिए प्रयास करने के लिए, और ज्ञान से ही अंधेरापन दूर होएगा। ठीक है ना, ज्ञान से ही अज्ञानता दूर होती है। तो अगर हम ज्ञान अनुकूल ही नहीं करेंगे तो कहां समझ पाएंगे क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है। तो ज्ञान को अनुकूल करना है भक्तों की संगत में, फिर आस्ते आस्ते भगवान प्रेरणा बढ़ाएंगे। आखिर भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर के हृदय में विराजमान हूं, और जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए उनमें अगर कुछ कमी भी हो तो मैं दूर कर देता हूं, कहते हैं ना। तो हम सब में बहुत सी कमियां हैं, दोष हैं, पर अगर हम श्रद्धा से प्रयास करेंगे तो भगवान भी सहयोग देंगे। ठीक है ना, पर श्रद्धा से प्रयास करना चाहिए। और प्रश्न पूछो, ये तो बड़ा अच्छा मीठा श्लोक है।
और
नो क्वेश्चंस कौन सी स्थिति अंत में तो हर चीज भगवान की कृपा से होती है पर भगवान की कृपा निर्भर है हमारी श्रद्धा और प्रयास पर अगर हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफल रहें ईश्वर प्रेम बढ़े तो आप किसी आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर प्रेम को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हो समझे और जैसे कि यशोदा माता भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी हाँ तो उन्होंने बहुत प्रयास किया एक रस्सी ली एक रस्सी को दूसरी रस्सी के साथ जोड़ा तीसरी के साथ जोड़ा चौथी के साथ जोड़ा पर वो रस्सी जो थी हमेशा दो उंगली छोटी निकली फिर अंत में भगवान ने क्या कहा मेरी मां इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए तो उन्होंने बांधने दिया तो उसी प्रकार ईश्वर प्रेम बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करोगे तो फिर सफलता मिलेगी अगर हम पखंड करेंगे तो फिर उसी प्रकार का परिणाम मिलेगा आप जानते हो ना वो कथा मैंने शायद आपको सुनाई है वो ब्राह्मण की और वैश्य की हाँ याद है वो ब्राह्मण और वैश्य एक ब्राह्मण और वैश्य दोनों का घर था आमने सामने ब्राह्मण तो पखंड करता था कि मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं पर मन में वही सोच रहा था वैश्य की कार्यों के बारे में और वैश्य बेचारी हृदय में तो दुखी थी कि पाप के कार्य में जुड़ी हुई है पर मन में यही सोचते रहती थी कब मुझे ब्राह्मण जैसे जन्म मिलेगा मैं भी शास्त्र पढ़ूंगी भगवान की सेवा में जुड़ूंगी तो एक दिन उस इलाके में आग लग गई इसमें दोनों का देहांत हो गया तो यामदूत जी आए ब्राह्मण को नरक में ले जाने के लिए सजा के लिए तो ब्राह्मण ने कहा आप तो गलत पते पर आ गए हो आपको तो वैश्य को ले जाना चाहिए नरक में सजा के लिए मुझे थोड़ी मैं तो शास्त्र पढ़ रहा था जिंदगी भर तो फिर उन्होंने कहा आप दिखावा कर रहे थे शास्त्र पढ़ने का पर मन में आप सोच रहे थे उस वैश्य का भोग विलास का जीवन और वो वैश्य मन में सोच रही थी क्या कब मुझे ब्राह्मण का जन्म मिलेगा कब मैं भक्ति में जुड़ूंगी तो उस ब्राह्मण को जाना पड़ा सजा भुगतने का तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पखंड नहीं करना चाहिए क्योंकि भक्ति के मार्ग में पखंड के द्वारा कोई सफल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान तो हर चीज के साक्षी हैं और अंतर्यामी है तो इसलिए हमें ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए अगर हम ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हों ठीक है और कुछ बस ब्रह्मचारी इज नो क्वेश्चन ओके हरे कृष्णा